नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा गाली भी देते हैं, कैमरे भी बंद करा सकते हैं। इन दोनों कामों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में अलग से कोई मंत्रालय नहीं है, लेकिन गृह राज्य मंत्री ने अपने काम को आज विस्तार दिया। अपने मंत्रालय को बड़ा करते हुए पत्रकारों को गंदे लोग कहा, गाली दी और कैमरे बंद कर दिए। मंत्री जी ने जो गाली दी है उसे हमने कू और टू प्रकार की दो ध्वनियों से दबा दिया है, जिसे अंग्रेजी में बीप साउंड कहते हैं। जहां भी आप बीप सुनेंगे, समझ जाइए कि वहां मंत्री जी ने गाली दी है।
मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या?
जो काम है उस काम के बारे में बात करोगे कि धारावाहिक
के बारे में? नहीं,
एसआईटी
नहीं जाएगी।
ऐसा है, खराब है क्या?
ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है।
क्या करना है, क्या नहीं करना है,
मतलब कितने गंदे लोग हैं। क्या जानना चाहते हैं? क्या
बढ़िया। काशी में 55 कैमरे पवित्र हो गए थे क्योंकि वे सवाल नहीं कर रहे थे। लखीमपुर खीरी में एक सवाल क्या कर दिया, कैमरे वाले गंदे लोग हो गए। यही फर्क है प्रधानमंत्री और उनके मंत्री में। उनके मंत्री कैमरा बंद करा देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए दूरदर्शन 55 कैमरे लगवा देता है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा मीडिया को गंदे लोग क्यों कह रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो बाइडेन की डेमोक्रेसी समिट में कहते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका और फ्री मीडिया लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। 5 दिन भी नहीं हुए इस बयान को और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी मीडिया को गंदे लोग कह रहे हैं, कैमरा बंद करवा रहे हैं।
ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या?
ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही
मेरी नजर मीडिया को धमका रहे गृह राज्य मंत्री की कोट पर भी पड़ गई। देख रहा था कि टेलर ने कैसा सिला है। थोड़ी लूज फिटिंग है लेकिन ठीक है, इतना चलता है। लेकिन जैसे गाली दे रहे हैं, गंदे लोग बोल रहे हैं, वो नहीं चलता। एसआईटी को लेकर सवाल पूछते ही पत्रकार पर हावी हो गए, कैमरा बंद कराने लगे। क्या मंत्री जी ये सब प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कर रहे हैं? इन्हीं सब कारणों से प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत दुनिया में 142वें नंबर पर है, यानी नीचे। एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तैयार हुई है, ना कि मीडिया की निगरानी में। इस एसआईटी ने कोर्ट से गुजारिश की है कि मंत्री जी के बेटे पर दुर्घटना की जगह हत्या का आरोप लगाए जाए, क्योंकि किसानों को साजिश के तहत मारा गया है। हम भी समझते हैं कि एक रिपोर्ट है, लेकिन मंत्री संवैधानिक पद पर हैं, उन पर जांच को प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं। जब दूसरे सामान्य लोगों पर लगते हैं तो मंत्री पर क्यों नहीं लगेंगे? क्या प्रधानमंत्री अब अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करेंगे, या इसलिए नहीं करेंगे कि अब करेंगे तो लोग कहेंगे प्राइम टाइम के कारण कर दिया?
ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है?
क्या करना है, क्या नहीं करना है,
गंदे लोग
इस वीडियो को देखकर अजय मिश्रा का एक पुराना बयान याद आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग जान लें वे सांसद और विधायक बनने से पहले क्या थे। क्या थे? क्या मंत्री जी ऐसा कुछ थे जैसा इस वीडियो में वे प्रदर्शन कर रहे हैं?
मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक हुआ और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ।
मंत्री जी क्या थे ये जानने के लिए लोकसभा की वेबसाइट पर उनका बायोडेटा पढ़ने लगा। मैं काफी भावुक हो गया कि मैंने उनके बारे में क्या क्या सोच लिया था, वही सब बाहुबली एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन उन्होंने तो लिखा है कि सामाजिक असमानता से द्रवित होकर राजनीति में आ गए और बीजेपी के जिला महासचिव बने। सोचिए तो, लोगों की गरीबी से द्रवित होकर राजनीति में आ गए, उनके बारे में लोग जानते ही नहीं कि विधायक और सांसद बनने से पहले क्या थे। किस तर्क से मान लिया जाए कि इस पद पर रहते हुए मंत्री जी जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के सवाल को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है लोकसभा में ताकि इस पर चर्चा हो।
कंस्पिरेसी हुई है, किसानों की हत्या की गई और कहा जा रहा है कि मंत्री इन्वॉल्व है। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में है, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन की बात आती है नहीं देते हैं, और जो हत्यारा है जिसने मारा है उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। तो मतलब ये हम पार्लियामेंट में रेज करना चाहते हैं, मगर वो अलाउ नहीं कर रहे।
श्री पीयूष गोयल हैज मेड इट क्लियर इन द आफ्टरनून इटसेल्फ, आई वांट टू रीट्रेट दैट इज इन द मैटर इज इन द कोर्ट एंड नो लेस देन सुप्रीम कोर्ट इज मॉनिटरिंग इट एंड नाउ देयर इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। डू यू वांट टू इन्फ्लुएंस बाय डिस्कसिंग द प्रोब? वी डोंट वांट दैट। वी वांट दैट देयर शुड बी ए फेयर प्रोब, इंपार्शियल प्रोब। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट वांट्स।
प्रेस तो यही पूछ रहा था कि आपके बेटे आशीष मिश्रा पर एसआईटी की रिपोर्ट में हत्या के आरोप लगे हैं, विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन मंत्री जी कैमरे वाले को गंदे लोग कहने लगे। कोई फैसला नहीं दे रहा है प्रेस, लेकिन आरोप लगा है। आप मंत्री हैं तो आपसे सवाल होगा। सवाल इसलिए भी होगा कि जिस जीत से किसानों की हत्या की गई, जो हत्या साजिश के तहत की गई कि किसानों को मार देना है, वो जीत मंत्री अजय मिश्रा के नाम से रजिस्टर्ड, मंत्री जी शामिल नहीं है, ये अभी कैसे कहा जा सकता है। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है। जब एसआईटी ने साजिश की बात कह दी तो इस्तीफा मांगने का सवाल कैसे गलत हो सकता है? इस तरह से किसानों को कुचलकर मार दिया गया, एक पत्रकार श्याम सुंदर की हत्या हुई है, मंत्री जी पत्रकारों को ही गंदे लोग बोल रहे हैं। काशी में 55 कैमरों का कितना महत्व था, खीरी में एक कैमरे को बंद करा दिया गया। करोड़ों जनता बिना कैमरे के महंगाई में डूबी है, उसके सामने एक कैमरा नहीं है। प्रधानमंत्री 2 मिनट के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं, उनके लिए 55 कैमरों के इंतजाम लगाए गए हैं कार्यक्रम में। प्रसार भारती के प्रमुख शशि शेखर वेमपति ने ट्वीट कर देश को बता दिया कि प्रधानमंत्री के काशी विश्वनाथ के दौरे को कवर करने के लिए 55 कैमरे लगाए गए हैं। अभी तक लोग अंदाज से बात कहते थे कि हर तरफ कैमरे हैं और कैमरे में प्रधानमंत्री की नजर है, लेकिन यहाँ शशि शेखर वेमपति ने कैमरों की संख्या ही बता दी। 55 कैमरों के इस तपोवन में प्रधानमंत्री जहाँ से गुजरते थे कई एंगल से फिल्माया जाने लगता था ताकि गुजरने के दृश्य को क्षण क्षण बदल कर दिखाया जा सके। हर पल लगे कि कुछ नया देख रहे हैं और नया के नाम पर कवरेज में एक्शन बना रहे। एक्शन में जान डालने के लिए जिमी जिप्स लगाए गए, जिनकी मदद से कैमरे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उठते हुए करीब जाकर पीछे हटते हुए प्रधानमंत्री को कवर करते रहे। और इन सबको उसी वक्त घर घर पहुंचाने के लिए 7 सैटेलाइट अपलिंक वैन लगाए गए, ड्रोन कैमरों की मदद से वीडियो बनाकर मीडिया को दिया जा रहा था ताकि आप घर बैठे आकाश की ऊंचाई से देखने का सुख प्राप्त कर सकें। आरएफ कैमरे भी लगाए गए। प्रसार भारती के प्रमुख ने केवल कैमरों और अपलिंक वैन की संख्या बताई, बाकी की नहीं। यह जानने का विषय है कि दूरदर्शन ने इस कवरेज पर कितना खर्च किया, यह आप कभी नहीं जान पाएंगे कि इसके अलावा गोदी मीडिया के कितने कैमरे दिन रात काम कर रहे थे, उनका खर्चा कितना रहा होगा। हम यह सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब कोरोना आया तो केंद्र और राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिए। पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर से अधिक हो गया और उसके कारण दूसरी चीजों के दाम बढ़ने लगे। सरकार का ही आंकड़ा है कि पिछले 5 साल में सभी सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से 32 लाख करोड़ से अधिक कमाए हैं। 2018 से 2021 के बीच ही 18 लाख करोड़ से अधिक की वसूली हुई है। जनता जब रो रही थी कि बहुत महंगा है तो मंत्री कह रहे थे महामारी के कारण सरकार के पास पैसा नहीं है, विकास और टीके के लिए टैक्स लिया जा रहा है। जनता ने मान लिया, रोते रोते टैक्स दिया। तो क्या इस पैसे से सरकारी आयोजन इस तरह भव्य होने चाहिए जिस तरह से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हो रहे हैं? क्या उनके कार्यक्रम इस महंगाई के दौर में विलासिता की सीमा को पार नहीं कर रहे हैं? आप नोट नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री के किसी भी सरकारी कार्यक्रम को देखिए कितने खर्चीले और शाही हो चुके हैं। सरकारी कार्यक्रम के नाम पर बसों में भरकर लोग लाए जा रहे हैं, आयोजन स्थल को भव्य बनाया जा रहा है, वायुसेना के विमानों से उड़ान भरने को कहा जा रहा है। अगर यूपी और केंद्र सरकार यही बता दे कि प्रधानमंत्री के इन कार्यक्रमों पर अब तक कितना खर्च हुआ है तो आपको पता चलेगा कि आप जो पेट काटकर पेट्रोल के दाम दे रहे हैं उस टैक्स के पैसे से क्या कुछ हो रहा है। जिन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री विकास और विरासत की बात करते हैं क्या उन्हें वहां विलासिता नहीं दिख रही है? अनुराग द्वारी की ही रिपोर्ट थी कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के 4 घंटे के कार्यक्रम के लिए 23 करोड़ खर्च हुए। 13 करोड़ का बजट लोगों को कार्यक्रम में लाने ले जाने के लिए था। जिस वक्त जनता महंगाई से परेशान है, कमाई नहीं है, उस वक्त प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम विलासिता से भरे क्यों नजर आते हैं? डू यू गेट माई पॉइंट? प्रधानमंत्री के घरेलू दौरों का खर्चा रक्षा बजट से आता है लेकिन राज्यों में जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनके खर्चे का अनुमान भी किसी को नहीं मालूम। खासकर चुनावी राज्यों में बंगाल के बाद यूपी में उनके सघन दौरों और कार्यक्रमों की संख्या बढ़ चुकी है। आखिर इन खर्चों का हिसाब क्यों नहीं दिया जाता है? जिस तरह से pmindia.gov.in की साइट पर प्रधानमंत्री के कुछ विदेश दौरों का केवल विमान का खर्चा दिया गया है, अन्य खर्चे उसमें शामिल नहीं होते हैं। इस पर जानकारी दी गई है कि 2019 में 13 से 19 नवंबर के बीच उनकी ब्राजील यात्रा का बिल 20 करोड़ है। उसी साल 21 से 28 सितंबर के बीच अमेरिका की यात्रा पर 23 करोड़ से अधिक खर्च हुआ। ध्यान रखिए कि एसपीजी का बजट अलग से होता है, वो 400 करोड़ के आसपास होता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का भी बजट होता है, कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की सैलरी और अन्य भत्ते, पूर्व प्रधानमंत्रियों पर होने वाले खर्चे इसमें शामिल होते हैं। 2020-21 के बजट में मंत्रिपरिषद का बजट 766 करोड़ प्रस्तावित था जिसे बढ़ाकर संशोधित बजट में 939 करोड़ कर दिया गया है। 21-22 के बजट में तो 1160 करोड़ प्रस्तावित है। मंत्रियों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। क्या प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि चुनावी राज्यों में मंत्रियों के हवाई खर्चे का हिसाब कितना है? कोरोना काल में मंत्री परिषद का बजट क्यों बढ़ रहा है? अखबारों के जरिए ये खबरें आप तक पहुंच गई होंगी कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। अक्टूबर में ही महंगाई पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक हो गई थी, 12.25%, लेकिन नवंबर में तो उससे भी अधिक हो गई, 2% बढ़कर 14.23% हो गई। पिछले साल इसी महीने 2.29% थी। एक जानकार का कहना है कि 1991 के बाद इतनी महंगाई नहीं देखी गई, 30 साल का यह रिकॉर्ड है। यह हेडलाइन कह रही है कि भारत में 1991 के बाद से इतनी महंगाई कभी नहीं आई। भारत की अलग अलग भाषाओं के अखबारों की हेडलाइन बता रही है कि पिछले 1 साल से जनता की जेब से लेकर बचत पर क्या असर पड़ा है। अब यह पुराना हो गया कि महंगाई आसमान छू रही है, नया यह होना चाहिए कि महंगाई अंतरिक्ष में चली गई है। 8 महीने से थोक महंगाई दर 2 अंकों में है। 4 नवंबर को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की गई, उसके बाद राज्यों ने भी की, तब भी असर नहीं पड़ा। पेट्रोल अभी भी भारत के तमाम शहरों में 95 रुपया लीटर बिक रहा है, मुंबई में 109 रुपये लीटर है। महंगाई के असर को कवर करने के लिए एक चैनल को कम से कम 110 कैमरे चाहिए, 55 से डबल। हमारे पास इतने कैमरे नहीं है। प्राइम टाइम एक ही कैमरे से रिकॉर्ड करता हूं और कानन पात्रा रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन क्या जनता के पैसे से चलने वाला दूरदर्शन अपने 55 कैमरों से जनता की तकलीफ को कवर कर सकता है। प्रधानमंत्री जी जनता नी सेवा मा लागेला छे। आ जनता ने कवर करवा माटे दूरदर्शने केटला कैमरा लगाव्या छे। गुजराती में पूछ रहा हूं, हम एनिमेशन से तो 55 कैमरे बना ही सकते ताकि उनसे आपको दिखा सकें कि खाने पीने की चीजों के दाम 13 महीनों में किस तरह बढ़ गए हैं। कई महीनों से दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस बार भी खाने पीने की चीजें और ईंधन के दाम महंगे हुए हैं। यही कैमरे जब बैंकों में रखे आपके ब्याज के पैसे पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि बचत दर निगेटिव हो चुकी है। फिक्स डिपॉजिट के भरोसे जीवन काटने वालों की मासिक आमदनी घट गई। इन 55 कैमरों की मदद से आप डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत भी देखिए। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और एक डॉलर की कीमत 75 रुपए 88 पैसे तक हो गई है। 22 जून 2020 के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट है। इन 55 कैमरों से आप यह भी देखिए कि शहरों में बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ गई है। अब आप खुद ही सोफे से उठकर इन 55 कैमरों के सामने खड़े हो जाइए और इन्हीं में प्रवेश कर जाइए ताकि जनता ही गायब हो जाए। बीमा का प्रीमियम कितना महंगा होता जा रहा है, ऊपर से जीएसटी के कारण यह महंगाई और भी मारक होती जा रही है। रसोई गैस का दाम, स्कूल की फीस, अस्पतालों और दवाइयों के खर्चे, हर चीज महंगी हो चुकी है। वहां पर 55 कैमरे नहीं है, बैंकों में बचत के भरोसे जीने वाले रिटायर्ड लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है, वहां 55 कैमरे नहीं है।
हम लोगों का जो पेंशनर भोगी है उनका जीना दुश्वार होते जा रहा है। कारण है कि एक और तो उस समय जो एफडी हम लोग किए थे बैंक में, मैं जो किया था बैंक में, उसका ब्याज दर जितना था उससे हुआ घट करके लगभग आधे पर आ गया है। जो हमारे बचत बैंक खाता में पैसा रहता था उस पर हमें मिलता था 4-5% तक इंटरेस्ट, और वह घट करके आ गया है 2% तक।
जो हम जो पैसा अपना पेंशन के रख के उससे ये उम्मीद करते थे, इससे जो पैसा हमको सालाना या महीनवारी जो आएगा उसमें कुछ कुछ खर्चा करेंगे, परिवार सुसंगत रहेगा, हम जो है किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, ये सोच कर रखे थे। लेकिन अब ये बात नहीं हो रही है। उसका जो रिटर्न आ रहा, सूद आ रहा है, उससे हम असंतुष्ट हैं। इसके लिए सरकार व्यवस्था करे ताकि ये पेंशन लोगों को जिंदगी आराम से बीते।
नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा गरीबी यूपी, बिहार और झारखंड में है। यूपी की आबादी का 37.79% गरीब है। यह आंकड़ा करीब 8 करोड़ के आसपास बैठता है। लेकिन यूपी सरकार ने मुफ्त अनाज वितरण का जो विज्ञापन दिया है उसमें यही लिखा है कि 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। केंद्र सरकार कहती है यूपी में करीब 8 करोड़ लोग गरीब हैं। यूपी की सरकार कहती है उसके राज्य में 15 करोड़ गरीब हैं। मेरी बात मुख्यमंत्री से होती है ना प्रधानमंत्री से, तो बता नहीं सकता कि कितने गरीब हैं। यूपी चुनाव का एक फायदा तो हुआ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नवंबर में बंद होने जा रही थी। इसकी घोषणा हो चुकी थी लेकिन दोबारा शुरू कर दी गई। अब यह योजना मार्च 2022 तक चलेगी। यूपी सरकार ने इसमें अपनी तरफ से काफी कुछ जोड़ दिया है। इसके तहत महीने में 2 बार मुफ्त अनाज मिलेगा और यह राशन केवल गरीबों को नहीं बल्कि सभी कार्ड धारकों को मिलेगा। इसके तहत 1 किलो दाल 1 लीटर तेल 1 किलो नमक फ्री मिलेगा। सरकार महंगाई के राजनीतिक असर को जानती है, इसलिए नून तेल बांट रही है। झोला भी दिया जा रहा है अतिरिक्त, ताकि मुफ्त नून तेल के साथ मुफ्त में दाता की तस्वीर भी घरों में पहुंच सके। इसके बाद भी लोग महंगाई से परेशान हैं। नसीम से आगरा में कई लोगों ने अपनी बात बताई।
इस महीने मिला है 1 तेल 1 किलो चना और 1 किलो नमक।
पूरी महीने हो जाता है?
अरे बिल्कुल नहीं हो पाता, 2-4-5-10 दिन के लिए। लॉकडाउन में नौकरी चली गई मेरी, मिल जाती है मजूरी तो कर जाता हूँ, नहीं है तो बस घर बैठे ही हैं। इधर उधर 100-150 रुपये की मजूरी नहीं मिल पाती है।
सामान ले रहा हूँ, आटा ले रहा हूँ, आटे की महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। इतनी इनकम है नहीं, कमाई है नहीं बिल्कुल भी, और सामान इतना महंगा महंगा होता जा रहा है। दाल चावल पर सबका रेट बढ़े हुए हैं, गरीब आदमी कहाँ से ले जाएगा, इतनी इनकम है नहीं, नौ काम धंधा है नहीं, प्राइवेट आदमी है।
अनुराग द्वारी के पास 55 कैमरे नहीं है, केवल एक कैमरा है। उसी एक कैमरे से उनकी रिपोर्ट जो बता रही है वो आप 55 कैमरे से नहीं जान सकते। प्रधानमंत्री ने देश की गरीब जनता के लिए मुफ्त अनाज की योजना लॉन्च की। उस योजना में भी भाई लोगों ने फर्जी एंट्री कर कथित रूप से घोटाला कर लिया है। एफआईआर में निकुंज शर्मा का नाम आया है और जांच हो रही है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हो रहे इस अन्न वितरण के लिए आप सभी को बहुत बधाई।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री ने अगस्त में राज्य के लाभार्थियों को बधाई दी, लेकिन लगभग उसी वक्त अशोकनगर जिले में सेवा संस्था रातीखेड़ा ने मारूप गांव की इस राशन दुकान से गरीब हितग्राहियों को 336 क्विंटल 66 किलो गेहूं, 83 क्विंटल 97 किलो चावल नहीं बांटा, जिसकी कुल कीमत 13,45,860 रुपए थी, लेकिन POS मशीन में इसकी फर्जी एंट्री कर दी। हितग्राही जनसुनवाई में शिकायत लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। कलेक्टर के आदेश पर समिति के प्रबंधक निकुंज शर्मा और दुकानदार श्याम गोस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में आवेदन प्राप्त हुआ था ग्रामीण वासियों की शिकायत पर, उस पर कार्रवाई की गई, जिसमें जो है 13,45,660 रुपए की रिकवरी निकाली गई और प्रकरण जो है कलेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार FIR दर्ज करवाई गई है।
प्रबंधक का कहना है उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि नोटिस का जवाब देरी से दिया।
जो है वो माल अपने बांट दिया था तो नोटिस आया था, उसका अपन जवाब में मतलब कुछ विलम्ब हो गया तो भाई खत्म हो गए थे और जनता पूछ लो सब मतलब सबको माल वितरण किया।
लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। कांग्रेस की मांग है आरोपियों पर रासुका लगे। वो BJP के सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से आरोपियों के रिश्ते की बात उठा रही है, कालाबाजारी के आरोप लगा रही है। वहीं BJP का कहना है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है।
वे निकुंज शर्मा किसी सामान्य पृष्ठभूमि के नहीं है, वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी शर्मा के सबसे बड़े भाई हैं। अब मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी उन पर रासुका लगाएंगे, उनको जेल भेजेंगे, जैसा वो बार बार कहते हैं।
देखिए, मध्य प्रदेश में किसी भी विषय को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है मुख्यमंत्री जी की, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का तो पालन होना सुनिश्चित है।
वैसे सरकार का दावा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य में 1,15,00,000 पात्र परिवारों के लगभग 5,00,00,000 हितग्राहियों को 25,000 से अधिक राशन दुकानों से निःशुल्क खाद्यान्न वो थैले में दे चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चेहरे चमकाते इस झोले की कीमत 13.90 रुपए थी। सिर्फ थैले के लिए सरकार ने उस वक्त 16,00,00,000 रुपए खर्चे थे। जिस दिन अन्न उत्सव का शोर था, उस दिन गरीबों के साथ क्या मजाक हुआ, इसकी भी कहानी हमने आपको दिखाई थी।
मजदूरी छोड़ के आए 300-400 रुपए, वो फिर कहो आप सब मार के रो जाओ, पेट्रोल जलाओ, घर चले जाओ,
मिलना ही रही है राशन, क्या तुम रियायती खत्म है।
गेहूँ मिला है 10 किलो, भुना हुआ है,
भुना हुआ है, खा सकते हैं ऐसी स्थिति में,
अब साफ सफेद मजदूरी में खाना पड़ेगा।
गरीबों को मिलने वाले राशन को लेकर हमने पहले भी खबर दिखाई थी कि कैसे भेड़ बकरी को खिलाने वाला अनाज दिया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी संज्ञान लिया था। खुद राज्य सरकार ने ये माना था कि 96,00,000 फर्जी गरीबों को PDS का राशन बांटा गया। एक और बात, जो राशन बटा था वो भी आधा अधूरा।
अन्न उत्सव में उत्सव से लेकर थैले में माननीय का चेहरा चमकाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, बावजूद इसके हितग्राहियों को आधा अधूरा अनाज ही मिला। जिस राशन घोटाले की बात हो रही है उसमें सिर्फ एक सोसाइटी और संचालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जबकि राज्य में ऐसे हजारों संचालक हैं और सब के सब सियासी तौर पर रसूखदार। अशोक नगर से स्वदेश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
सारा खेल 55 कैमरों का है। एक कैमरे से जो वास्तविकता आपके सामने रखी जा सकती है उसे आप 55 कैमरे लगाकर नहीं छिपा सकते। महंगाई के कारण भारत की जनता हर दिन गरीब होती जा रही है। यह सब कुछ 55 कैमरों की नजर से दूर घट रहा है, लेकिन उन्हीं कैमरों के सामने बैठे लोगों के बीच घट रहा है। उम्मीद है कि सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। गंगा में डुबकी लगाने का सीधा प्रसारण होता रहे, महंगाई में डूबे लोगों की हालत का प्रसारण ही ना हो, यह बात प्रसारित की जानी चाहिए थी, जो कि हमने की। अब आप ब्रेक ले सकते हैं। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद राकेश टिकैत घर ही नहीं गए। अब आंदोलन समाप्त हुआ तो आज उन्होंने घर वापसी की। रविश रंजन की ये रिपोर्ट।
वहीं सोरम का ऐतिहासिक पंचायत का चौपाल है जहां पर अभी राकेश टिकैत जी तुरंत पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम सारे किसान नेताओं के साथ में राकेश टिकैत यहां पर मौजूद हैं। और जब ये गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन शुरू हुआ था, किसान आंदोलन, उससे पहले भी उन्होंने इसी सोरम की ऐतिहासिक चौपाल से एक पंचायत की थी और पंचायत के बाद में सर्व खाप का जो समर्थन है, जो 36 बिरादियों का, वो इनको राकेश टिकैत को मिला था। और यहाँ से तमाम हजारों की तादाद में जो ट्रैक्टर ट्राली और जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर गए हुए थे। और वो वही किसान आप देख सकते हैं इस गांव में जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक तौर पर इनका स्वागत किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर राकेश टिकैत अपने घर सिसौली न जाकर सबसे पहले सोरम की इस पंचायत में क्यों आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो पंचायत है ये किसान आंदोलन को एक नई ताकत हमेशा से देते रही है। 2006 में भी जो राकेश टिकैत जी के पिता हैं स्वर्गीय महेन टिकैत, उन्होंने भी यहाँ पर पंचायत की थी। और उसके बाद में चूंकि जो बालियान खाप है उसके प्रमुख हैं राकेश टिकैत के जो बड़े भाई नरेश टिकैत, और बालियान खाप जो है वो ये पंचायत को पूरा संचालन करती है जहाँ पर एक सर्व खाप की हमेशा पंचायत होती है। तो इसके वजह से ये बहुत खास है और यही वजह है कि आज यहाँ सारे किसान नेता जो है वो मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो चौपाल है ये बहुत ही ऐतिहासिक चौपाल है, 17वीं शताब्दी की ये चौपाल कही जाती है। और यहाँ पर किसान आंदोलन शुरू होने से पहले पंचायत जब राकेश टिकैत ने यहाँ पर की थी तो हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो आए थे और 36 बिरादरियों का जो समर्थन है वो मिला था, मतलब जाटों के अलावा जो 26 बिरादरियां हैं उनका समर्थन राकेश टिकैत को मिला था। तो यही वजह है कि वो सबसे पहले सिसौली न जाकर उन्होंने सोरम के इस पंचायत, इस चौपाल को चुना है कि वो सबसे पहले आकर यहाँ पर किसानों को धन्यवाद दें।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।